उसके बाद आ जाते हैं हम ऑन द फॉलो अप। तो इनिशियली जो है वो हमारे पास जब पेशेंट बिल्कुल एक्टिव डिजीज़ में होता है तो वी कॉल द पेशेंट क्वाइट फ्रिक्वेंटली एवरी 2 वीक्स टू लुक फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट टू द ट्रीटमेंट, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने स्टीरॉयड की डोज़ को इन्हांस करना है, कंटिन्यू करना है, डिक्रीज़ करना है। तो इसमें जो है ना वो एवरी 2 वीकली, फिर उसके बाद जो है ना वो मंथली या ट्वाइस मंथली और आफ्टर 2 मंथ्स इस तरह इन कंसोलिडेशन फेज मंथली या बाय मैनुअल बाय मंथली विजिट्स हम पेशेंट की डिसाइड करते हैं। मॉनिटरिंग में हमने ये करना होता है कि पेशेंट की डिजीज़ एक्टिविटी एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट को हमने देखना होता है, और इसके अलावा सेरोलॉजिकल मॉनिटरिंग यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि क्लिनिकल एंड सेरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट टू लुक फॉर द डिजीज़ एक्टिविटी रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। सेरोलॉजिकल मॉनिटरिंग जो है वो इसमें हमने एलाइजा इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के साथ करनी होती है। ये याद रखना है हमने कि हमने इस जब पेशेंट को फॉलोअप्स के लिए बुलाना है ना फॉर मॉनिटरिंग, वी विल डू द इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस नॉट द डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। फिर उसके बाद इसमें है कि न्यू इमर्जिंग क्या है कि एंटी डेस्मोग्लिन 3 एंड सलाइन, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, लेकिन बस एलाइजा और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमने याद रखना है। तो सीरम ऑटो एंटीबॉडीज हमने कितने फ्रिक्वेंटली करने होंगे, एवरी 3 मंथ्स इनिशियली एंड देन आफ्टर 3 टू 6 मंथ्स करना होगा। क्लिनिकल असेसमेंट के लिए तो हम एवरी 2 वीक्स और एवरी मंथली बुला सकते हैं पेशेंट को, लेकिन जो एलाइजा और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस है ये एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं, तो इस वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते। इनिशियली 3 मंथली करेंगे, उसके बाद 3 टू 6 मंथली कर देंगे।